Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Giri Dhari Radha Giri Dhari Radhe Jai Jagannath Jai Baladeva Jaya Subhadra Jaya Guranitai, Jaya Gauranitai, Guranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Jaya Prabhupad, 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 Prabhupad. Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Premanande Jai Om Nitalila Parvish जय ओम नित्यलीला प्रविष्ट हरिवाज का आचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमदभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय ओम नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस परिवार का आचार्य अष्टोत्तरशत भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय श्रील नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय जय श्री श्री राधा गिरधारी जी की जय जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय जय श्री श्री गौर निताई की जय युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय विश्व मंगल पतित पावन हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय सब वेद भक्त वृंद की जय निताई गौर हरि प्रेमानंद ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरञ्चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वती व्यासम् ततो जय मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। तो रविवार के इस प्रातःकालीन भागवत सत्र में आए हुए सभी भक्तों का राधा गिरधारी मंदिर के प्रांगण में स्वागत है। जो वर्तमान प्रसंग चल रहा है श्रीमद् भागवतम में, कुबेर के आत्मा नल, कुंवर और मणिग्रव का स्तुति चल रहा है। नल, कुंवर और मणिग्रीव जो बहुत ही पाप में प्रवृत्त देवता पुत्र थे, कुबेर जी के पुत्र थे, हैं व्यभिचार में, शराब का नशा, लेकिन ऐसे इन दोनों को भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ। ये घटना इसी प्रकार प्रभुपाद जी की लीलाओं का स्मरण कराती है। जैसे वर्तमान समय में विश्व के 100 से भी ज्यादा देशों में प्रातःकालीन समय में श्रीमद् भागवतम का सानिध्य प्राप्त होता है, और उन भागवत का सानिध्य प्राप्त करने वाले लोग भी पाश्चात्य जगत के लोग नल, कुंवर और मणिग्रीव की तरह पाप में लिप्त थे। लेकिन ऐसे पापों में लिप्त रहने वाले व्यक्तियों पर भी जब एक शुद्ध वैष्णव की कृपा होती है, उनकी कृपा से, जैसे इस अध्याय में एक श्लोक में शब्द आया है नारद जी के द्वारा, मत प्रसादा मत तत्रापि मद अनुग्रहात्। मत प्रसादा मेरी कृपा से, और तत्रापि मद अनुग्रहात्, और साथ साथ में मेरे अनुग्रह से हैं वासुदेवस्य सानिध्य लब्धवा, तुम वासुदेव का, भगवान कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करोगे। किससे? नारद जी की कृपा और नारद जी के अनुग्रह से। ऐसे पाप में लिप्त लोगों को भी भगवान कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हुआ। वैसे ही पापों में लिप्त पाश्चात्य जगत के कुछ लोगों को प्रभुपाद की कृपा से, प्रभुपाद जी के अनुग्रह से भी वासुदेव सानिध्य प्राप्त हुआ। श्रीमद् भागवतम में और भगवान कृष्ण में कोई भेद नहीं है, अभिन्न है भगवान से भागवतम। तो आज वर्तमान समय में ऐसे 100 से अधिक देशों में श्रीमद् भागवतम का सानिध्य, श्रीमद् भागवतम का श्रवण कीर्तन जो ऐसे पापी जीवों को भी प्राप्त हो रहा है, ये प्रभुपाद जी की कृपा है और प्रभुपाद जी का अनुग्रह। नारद जी में और प्रभुपाद जी में बहुत समन्वय है। आप देखेंगे नारद जी की लीला और प्रभुपाद जी की लीला तो बहुत समन्वय है। जैसे प्रभुपाद ने विश्व के बड़े बड़े राजकुमारों को भक्त बनाया, हम देखते हैं जैसे अमरीश दास गिरिराज स्वामी महाराज, जॉर्ज हैरिसन, ये बड़े बड़े राजकुमार थे, ये राजकुमारों से कम नहीं है। अमरीश दास हेनरी फोर्ड के पुत्र हैं और हेनरी फोर्ड का भी पद एक राजा जैसा ही है। पूरे विश्व में उनका ऑटोमोबाइल का कंपनी पूरे विश्व में, और वो अमेरिका के राजा जैसे ही हैं, बहुत धनी व्यक्ति हैं। और उनके पुत्र अमरीश दास अल्बर्ट फोर्ड, उनको प्रभुपाद ने भक्त बनाया। गिरिराज स्वामी महाराज जो थे, जो हैं, ये न्यूयॉर्क के जो मेयर थे उनके पुत्र हैं, तो ये भी राजकुमार हैं। और जॉर्ज हैरिसन जो लंदन के बहुत ही विख्यात संगीतकार और गायक हैं, बहुत विख्यात, उनको भी प्रभुपाद जी ने भक्त बनाया। जैसे नारद जी को देखते हैं, ध्रुव महाराज राजकुमार हैं, प्रहलाद महाराज राजकुमार हैं, चित्रकेतु राजा हैं, और ऐसे ऐसे लोगों को नारद जी ने भक्त बनाया, तो प्रभुपाद जी ने भी ऐसे ऐसे लोगों को भक्त बनाया। साथ साथ में नारद जी रत्नाकर, मृगारी, ऐसे पापी लोगों को भी भक्त बनाया, तो प्रभुपाद जी ने भी हिप्पी, हिप्पी क्या है, कोई मृगहरी जैसे ही है, रत्नाकर जैसे, तो हिप्पियों को, मलेच्छों को, यवनों को भक्त बनाया। इस प्रकार प्रभुपाद जी का लीला और नारद जी का लीला मिलता जुलता है। एक और प्रभुपाद जी एक जगह पे लिखते हैं कि जब नारद जी ने दक्ष प्रजापति के 60,000 पुत्रों को ब्रह्मचारी बना दिया, भक्त बना दिया, तो दक्ष प्रजापति ने 1,000 पुत्र और उत्पन्न किए, तो नारद जी ने उनको भी ब्रह्मचारी बना दिया। तब दक्ष प्रजापति कुपित होकर नारद जी को श्राप दे दिया कि तुम इस प्रकार साधु हो के असाधु हो, हमारे पुत्रों को बिगाड़ दिया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम एक स्थान पर ज्यादा देर रुक नहीं सकोगे, ठहर ही नहीं सकोगे। तुम एक स्थान पर ज्यादा ठहरोगे तो पिचिंग करोगे ना, मैं श्राप देता हूं कि तुम एक जगह पर नहीं ठहर पाओगे। इसलिए हम देखते हैं कि नारद जी घूमते ही रहते हैं, घूमते ही रहते हैं सभी लोगों में। तो प्रभुपाद जी वहां पर लिखते हैं कि नारद जी की तरह हमें भी श्राप मिला, हमने भी बड़े बड़े लोगों के पुत्रों को ब्रह्मचारी बना दिया, तो उनके माता पिताओं द्वारा लगता है हमें भी श्राप मिला है, जिसके कारण मैं भी घूमता ही रहता हूं, घूमता ही रहता हूं। 8 या 10 वर्ष की अवधि में 14 बार पूरे विश्व का भ्रमण किया प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं हमको भी श्राप मिला है नारद जी की तरह। तो यहां पर हम देखते हैं नारद जी का लीला और प्रभुपाद जी का लीला। मत प्रसादा मद अनुग्रहात लब्धवा वासुदेव सानिध्यम। तो इस प्रकार उन्हीं प्रभुपाद जी के सानिध्य में रहते हुए आइए हम आज के श्रीमद् भागवतम के प्रसंग पर अग्रसर होते हैं। ये भी एक नारद जी की लीला का ही प्रसंग है। तो श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 10 और श्लोक संख्या 33। तस्मे तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेदसे आत्मघोत गुणे सन्न महिमने ब्रह्मणे नमः। तस्मे तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेद्यसे आत्मभूत गुणे स्थन्ना महिम्ने ब्रह्मणे नमः तस्मै तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेद्यसे आत्मभूत गुणे छन्ना महिम्ने ब्रह्मणे नमः तस्मै तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेद्यसे आत्मभूत गुणे छन्ना महिम्ने ब्रह्मणे नमः।
Thank you.
तस्मै तुभ्यं भगवते महिने तमने नमः। शब्द अर्थ प्रभु जी करेंगे। तुभ्यं आपको भगवते वासुदेवाय संकर्षण प्रदुमन अनिरुद्ध के वास सृष्टि के उद्गम को आत्मा भूत गुणे छन्न महिमने आपको जिनका आयुष अपनी शक्ति से आच्छादित ब्राह्मण नमः। हमारा नमस्कार।
अपनी ही शक्ति से आच्छादित महिमा वाले हे प्रभु, आप भगवान हैं, आप सृष्टि के उद्गम हैं, संकर्षण हैं और चतुर्युग के उद्गम हैं, वासुदेव हैं, आप तो प्रगत होने से प्रगम हैं, अतः हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। कृष्ण को विस्तार से जानने का प्रयास करने की अपेक्षा चेष्टा यही होगा कि हम उन्हें सादर नमस्कार करें, क्योंकि वे हर एक वस्तु के उद्गम हैं और प्रगत हैं। क्योंकि हम प्रकृति के गुणों से प्रसन्न हैं, अतः जब तक वह हमारे समक्ष प्रकट न हो तब तक हमारे लिए उन्हें समझ पाना अत्यंत कठिन है। इसलिए यह स्वीकार करना चेष्टा है कि वे ही सदस्य हैं और हम उनके चरण कमलों में नमस्कार करते हैं।
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरनुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी वांछा कल्पतरुभ्यश्च सिंधुभ्य पतितानां पावनेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवासदी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो तस्मै तुभ्यं भगवते, इस श्लोक के प्रारंभ में ही नल कुंवर और मणिग्रीव भगवान को नमस्कार करते हुए कहते हैं तस्मै तुभ्यं और भगवते। भगवान को संबोधित करते हुए तस्मै और तुभ्यं, तस्मै मतलब उनको और तुभ्यं मतलब आपको, तो क्या अंतर है उसको और आपको? तस्मै और तुभ्यम्, ये तस्मै से पता चलता है उनको, किनको? जिनका गुणावली ये करते आए हैं, इसलिए तस्मै। तस्मै इसका अर्थ आप समझ सकते हैं अगर मंगलाचरण का उच्चारण में देखेंगे, ओम अज्ञानति मिरंदस्य ज्ञानांजन शलाकया चाक्षुर उन्मिलितम ये न तस्मे। पहले जिनका गुण गाया या जिनका कृपा का वर्णन किया या जिनका गुणावली किया, उनको तस्मे ये न तस्मे गुरुवे नमः, उन गुरु को मैं नमस्कार करता हूं। तस्मे शब्द क्या संबोधित करता है? उनको, किनको? जिनको, जिनमें हमारा तो जन्म जो है अज्ञान रूपी अंधकार में हुआ, लेकिन उन्होंने ज्ञान रूपी शलाका से हमारे आंखों को खोल दिया, ज्ञान प्रदान किया, ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूं। तो तस्मे, वहां तस्मे शब्द आता है। तो यहां भी तस्मे का अर्थ है कि उनको प्रणाम कर रहे हैं। किनको? जिनका ये गुणावली आगे से करते आए। तो तस्मे शब्द हमको थोड़ी पूर्व लीला में ले जाता है। ये जो यहां पर भगवान का स्तुति कर रहे हैं, नल कुंवर और मणिग्रीव, ये कुबेर जी के पुत्र हैं। ये बहुत ऊंचा कुल मिला हुआ है उनको। कुबेर जी के पुत्र हैं, कुबेर जी विश्रवा के पुत्र हैं और विश्रवा पुलस्य जी के पुत्र हैं और पुलस्य ब्रह्मा के पुत्र हैं। कितना अच्छा कुल है। इसमें भी अगर आप देखेंगे कि जैसे ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्य हैं, तो पुलस्य जी का भी जो विवाह है वो कर्दम मुनि और माता देवहूति और भगवान कपिल देव की बहन, कर्दम जी और देवहूति की पुत्री और भगवान कपिल देव की बहन से पुलस्य जी का विवाह हुआ था। कर्दम जी की जो देवहूति माता की 9 पुत्रियां हैं, उसमें से एक अत्री जी को ब्याही गई जो अनसुया, एक वशिष्ठ जी को ब्याही गई अरुंधति, और इस प्रकार एक पुत्री पुलस्य जी को ब्याही गई। और पुलस्य, उन्हीं पुलस्य जी के पुत्र हैं विश्रवा। तो इस विश्रवा के पुत्र हैं कुबेर, और विश्रवा के प्रसिद्ध पुत्र हैं मालूम है? रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा, मारी, ये 4 संतान हैं। तो विश्रवा जो हैं, उनकी 2 पत्नियां हैं, केशिनी और इड़गिड़ा। तो एक पत्नी से कुबेर जी हुए और एक पत्नी से ये 4 संतान हुए। पिता एक है, मां 2 है। एक बार क्या हुआ था, पद्म पुराण में ये कथा आती है कि कुबेर जी पुष्पक विमान लेकर घर पर आए और घर पे आके माता और पिता का सेवा किया, चरण सेवा किया, जो भी सेवा होता है किया, और सेवा करके विमान को आकाश में ही लोडिंग किया था, तो वापस विमान में चढ़कर चले गए पुष्पक विमान में। तो रावण उस समय छोटे थे, तो रावण ने अपनी मां से पूछा कि मां, ये कौन व्यक्ति है इतना बड़ा विमान में, ऐसा विमान में घूम रहा और हमारे घर आया, ये कौन है? मां से पूछा तो माता ने कहा कि हे रावण, हे पुत्र, ये तुम्हारा भाई है और इसने बहुत तपस्या करके बहुत ऊंचा पद प्राप्त किया है, ये देवताओं का कोषाध्यक्ष है और साथ साथ में तपस्या करके इस विमान को भी इसने प्राप्त किया है, पुष्पक विमान। तुम तो मात्र खा पी के पड़े रहते हो, ये उलाहना दिया मां ने। तो रावण ने, हां ऐसा बात है, मैं खा पी के पड़ा रहता हूं, मैं इससे भी ज्यादा कठोर तपस्या करूंगा और ये देवताओं का कोषाध्यक्ष क्या है, मैं देवताओं को ही जीत लूंगा और इस विमान को भी। और ऐसा रावण संकल्प करके कठोर तपस्या में लग गया। और हम जानते हैं कि ऐसी कठोर तपस्या की जो शिव जी से ब्रह्मा जी से सबसे वरदान प्राप्त किए, सारे देवताओं को भी अपने अधीन बना लिया और उस पुष्पक विमान को भी ले लिया। उसी दिन उसकी आंख में आ गया था वो पुष्पक विमान, जब कुबेर जी बैठ कर गए उसी पुष्पक विमान को ले लिया। जब भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त की, रावण का वध किया और उसके बाद जब अयोध्या लौटे तो इसी पुष्पक विमान में बैठकर भगवान आए थे। ये रावण के पास था, फिर भगवान ने इस विमान को विभीषण को दिया, राज्य और विमान दोनों। तो इतने बड़े कुल का, कुल में कुबेर जी आए और कुबेर जी का पद भी ऊंचा है, कोषाध्यक्ष है, हैं देवताओं का कोषाध्यक्ष है, तो फिर उसको धन का क्या कमी हो सकता है। तो इस प्रकार पूरे अध्याय में बहुत शिक्षा दिया गया धन के बारे में, धन के 15 गुण को बताया, दोषों को बताया गया और निर्धनता के गुणों को बताया गया। ऐसे संसार की दृष्टि में ये उल्टा लगता है ना, उल्टा लग रहा है। निर्धनता तो बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ा दुख है, और धन होना ये बहुत अच्छा है, लेकिन नारद जी विपरीत इसका क्यों दर्शन करा रहे हैं? ये जो आध्यात्मिक विषय है और भौतिक विषय, ये एक दूसरे का विपरीत है, उल्टा है ना। आध्यात्मिक विषय और भौतिक विषय एक दूसरा का उल्टा काम है। इसलिए जैसे हम भक्ति करते हैं तो इसको अलोक व्रत कहते हैं, अलोक व्रत, ये लोक का व्रत नहीं है। तो अलोक मतलब ये आध्यात्मिक विषय है वो लोक का उल्टा है। जैसे आप लोग महसूस करते हैं, जैसे भक्त लोग ऐसा माला झोली टिंगा कर बाजार में जाते हैं तो लोग इसको अच्छा नहीं समझते हैं, है क्या, और कोई मोबाइल टिंगा के जाता है तो अच्छा समझते हैं, बिल्कुल उल्टा काम है ना। तो भक्त लोग इसको मोबाइल को टिंगाना इतना अच्छा नहीं समझते, माला झोली को टिंगाना अच्छा समझते हैं, तो ये उल्टा है, हैं? मैं बार बार कहता हूं तिलक लगाते हैं तो इसको अच्छा नहीं समझते, लेकिन बहुत भारी मेकअप किया है ब्यूटी पार्लर उसको अच्छा समझते हैं। आध्यात्मिक जो विषय है, जो आध्यात्मिक में सर्वोपरि है, वो भौतिक जगत में निम्न माना गया है। जैसे कभी कभी भक्त लोग उदाहरण देते हैं कि परकिया भाव, परकिया भाव जो है वो आध्यात्मिक जगत में जो है वो सर्वोपरि माना गया है, और यही परकिया भाव भौतिक जगत में निम्न माना गया है। इसलिए कुछ लोग कृष्ण पर आक्षेप करते हैं, अरे कृष्ण तो पराई स्त्रियों के साथ नाचते, तो इसको निम्न मानते हैं, लेकिन आप आध्यात्मिक जगत में जाइए तो इसको सर्वोपरि माना गया है। ब्रह्मा, उद्धव जैसे बड़े बड़े ज्ञानी लोग इन गोपियों की चरण रज को प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान ने प्रक्रिया भाव में इनके साथ लीला की। तो आध्यात्मिक जगत में जो सर्वोपरि है वो भौतिक जगत में निम्न है, और भौतिक जगत में जिसको निम्न माना गया है उसको आध्यात्मिक जगत में बहुत ऊंचा माना जाता है। तो इसलिए यही बात, जो धन है उसको इस जगत में बहुत ऊंचा माना गया है, सर्वोपरि, और कलयुग के लिए तो बहुत। जहां 12वें स्कंद में कलयुग का वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं, उसमें पहले ही कलयुग का वर्णन में कहते हैं कि जो कलयुग में जिसके पास बहुत अवर्चिन धन होगा, बहुत धन होगा, वो ही सबसे बड़ा व्यक्ति माना जाएगा, वो ही ज्ञानी माना जाएगा, वो ही सबसे बड़ा कुल माना जाएगा, वो ही सबसे ऊंचा व्यक्ति माना जाएगा जिसके पास धन होगा। ये कलयुग की व्याख्या में पहला ही श्लोक ही आया है, आप 12वां स्कंद देखिए, धनी व्यक्ति को ही सबसे बड़ा माना जाएगा, धनी व्यक्ति को ही सबसे ऊंचा कुल माना जाएगा, धनी ही सब सर्वोपरि माना जाएगा कलयुग में। लेकिन लोक में ये बात माना जाती, परलोक में इसको अच्छा नहीं माना जाता। धन जब होता है तो व्यक्ति की इंद्रियां स्वतः भोग में चली जाती हैं और भोगों की सुविधा प्राप्त हो जाती है, इसलिए प्राय जो पाप है वो ज्यादातर धनी व्यक्तियों से होता है। जितने भी बॉम्बे में बियर बार चलते हैं तो ये धनी व्यक्तियों की मेहरबानी पर चलते हैं, गरीबों की नहीं। जितने भी अवैध काम होते हैं तो उसमें ज्यादातर प्राय जो धनी, जिसके पास बहुत धन है और बहुत धन के बाद भी उस पर भक्तों की कृपा नहीं है, भगवान की कृपा नहीं है या भक्तों का संग प्राप्त नहीं है, तो ऐसे लोगों का जो धन है वास्तव में पाप में ही प्रवृत्त कराता है। तो ये पूरी पूरी व्याख्या की गई है। व्यक्तियों को चाहिए कि अपने संतानों को धन न प्रदान करें, संस्कार प्रदान करें। प्रायः इस जगत में देखा जाता है, हम तो देखते हैं कहीं कहीं जो हम भक्त लोग हैं वो भी, हमारा उम्र हो गया अभी निवृत्त हैं तो भी हम चाहते हैं कि और थोड़ा धन इकट्ठा, किसके लिए, हमारे बेटों के लिए, हमारे पुत्र के लिए, ऐसा भक्तों में भी प्रवृत्ति देखी जाती। लेकिन किसी विद्वान ने कहा है कि पुत्र के लिए धन संचय करने की क्या आवश्यकता है, से कहते हैं कि सूत सपूत तो काहे धन संचय और सूत कपूत तो काहे धन संचय। अगर आपका पुत्र सपुत्र है तो धन उसको देने की क्या आवश्यकता है, सपुत्र है वो तो कमा लेगा, सपुत्र है अच्छा पुत्र है तो फिर वो तो धन कमाएगा। और अगर आपका पुत्र कपुत्र है तो आप धन क्यों संचय कर रहे हैं, वो तो उड़ाएगा, पाप में प्रवृत्त हो जाएगा। इसलिए संतानों को विरासत में संस्कार देना चाहिए, ना कि धन। लेकिन ये बातें अभी जुबान पर या किताबों में ही रह जाती हैं, इसका पालन करने वाले लोग कहते हैं सब लोग, लेकिन सब इसी में पड़े हुए हैं हमारे पुत्र के लिए। तो पुत्र चाहे कैसा भी हो, एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं, मतलब बहुत पद था उनका, भाईंदर में एक सरकारी व्यवधान में बहुत ऊंचे पद पर थे, तो हम उनसे मिलते थे तो वो प्राय हमको कहते थे इतना ऊंचा पद है लेकिन प्रभु जी हमारे पुत्र बहुत बेकार हैं। एक दिन हमको बताया, शायद वो बैठे होंगे इधर प्रवचन में, प्रभु जी मेरे एटीएम से हमारे पुत्रों ने 40,000 निकाल दिया और उड़ा दिया। बिल्कुल सत्य बात बताया। तो मैंने कहा प्रभु जी पुत्र के नहीं, आप थोड़ा धन मंदिर में दीजिए, एक साल परिश्रम किया तब वो लाइव मेंबर बने, लाइफ मेंबर के बाद किया आपने जगत तो देख लिया, अब क्या मत रहे हो, अब माला ले लो। तो एक साल बहुत प्रयास किया तो फिर उन्होंने माला झोली लिया, तो माला झोली या इधर मंदिर आते मैं पूछता था कि माला झोली कहाँ है, बोले नहीं नहीं माला झोली तो घर पे, मैं बोले घर पे नहीं इधर लेकर आओ। तो एक दिन अभी कुछ दिन पहले वो माला झोली गले में टिंगा कर आया, तो मैंने कहा ये बहुत अच्छा है। तो मुझको विष्णु कुमार या किसने, किसी भक्त ने कहा ये खाली टिंगा के रखते हैं जप नहीं करते हैं। मैंने बोला ये भी अद्भुत बात है कि वो कोई भक्त को कहते हैं कि माला झोली कहाँ है तो बोलता है मैं घर पे जप करता हूँ, टिंगाता नहीं हूँ। कुछ भक्त हैं जो झोली को टिंगाते नहीं है और घर पे रखकर जप करते हैं, कुछ भक्त हैं जो टिंगाते हैं लेकिन जप नहीं करते। ये भगवान का भी अद्भुत सृष्टि है, देखना चाहिए, भगवान ने अद्भुत तरह तरह की मुंडियां बनाई है, अद्भुत सृष्टि। वो भी प्रयास करते हैं उनको बनाने, लेकिन वो बेचारे बहुत दुखी है पुत्रों से, लेकिन फिर भी पुत्र पे जो मोह है वो जाता नहीं है। तो ऐसे प्रसंग अभी अभी हमारा एक भक्त से चर्चा हुआ, वो बैठे, मैंने बोला कि आपके पुत्र को बोलो कि एक भक्त कन्या है उससे विवाह कर ले, कि प्रभु जी सुन रहे। तो बोला नहीं नहीं हमारा पुत्र ऐसा नहीं है। मैं क्यों, मैं लो पूछ के तो देख लो। तो वो पूछ के आए पिछले रविवार, आज मैंने अभी पूछा, तो नहीं वो तो मना करता है। क्या मना कर, नहीं भक्त लड़की नहीं चाहिए। तो मैंने उनको उदाहरण दिया, ये बेटा ऐसा क्यों है, आप आइए समझाइए। मैं बोला इसको भी भगवान की कृपा समझो। मैंने उदाहरण दिया भागवत से कि आप वैन को जानते हैं, वैन जो था बहुत दुष्ट पुत्र था और इनके पिता जो अंब थे महान भक्त थे, तो उनका पुत्र इतना दुष्ट कैसे हुआ? तो वहां पर तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान की ये कृपा है, भगवान चाहते थे कि ये जो हम हमारे भक्त हैं इनका मोह और आसक्ति पुत्र में ना रहे। पुत्रों में बहुत हमारा आसक्ति होता है, पत्नी का जो आसक्ति होता है बाद में पुत्र के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है उसमें। पुत्र में हमारा बहुत मोह होता है, बहुत आसक्ति रहता है। तो भगवान ने महाराज अम्ब पर ये कृपा किया कि ऐसा पुत्र दिया कि उनका पुत्र से मोह हट जाए, और वास्तव में ऐसा ही हुआ। ऐसा पुत्र देखकर महाराज अम्ब घर त्याग करके जंगल में चले गए भजन करने के लिए। तो इस प्रकार कभी कभी भगवान की कृपा को हम समझ नहीं पाते। भक्त को हर प्रसंग को, हर स्थिति को भगवान की कृपा के रूप में देखना चाहिए कि निश्चित इसमें भी भगवान की कोई ना कोई कृपा है। प्रभुपाद जी का विवाह हुआ, विवाह के बाद प्रथम दिन उनके पिताजी गौर मुंडे ने पूछा कि अभय तुम्हारा पत्नी कैसा लगा? तो प्रभुपाद जी को कुछ पसंद नहीं आया, तो उनके पिता समझ गए और कहा कि ये तुम्हारे पर राधा रानी की बहुत बड़ी कृपा है। वास्तव में ये तो कभी कभी भगवान हमारे पर किस रूप में कृपा करते हैं। तो इस प्रकार आइए अब प्रसंग पर जाते हैं। तस्मय पर मैं बोल रहा था और लंबा चला गया प्रसंग, तो आप सुन ही रहे हैं। तो ये नलकुवर और मणिग्रीव कुबेर जी के पुत्र थे, अत्यधिक धन था, ऊंचा पद था, और ये शिव जी के अनुयायी थे। लेकिन वास्तव में कोई व्यक्ति देवी देवताओं का जब अनुयायी बनता है तो उसको भौतिक सुविधाएं सुख प्राप्त हो जाता है, और कभी कभी देवी देवताओं का या अन्य विधियों से पाप भी नष्ट होता है। लेकिन पाप करने की जो वासना है अंदर वो नष्ट नहीं होती अन्य देवी देवताओं या अन्य उपायों से, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, ताप, व्रत, इससे भोग पाप नष्ट हो सकता है लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट नहीं होती है। पाप करने की प्रवृत्ति तो भगवान के भक्तों की कृपा से, अगर भगवान के भक्तों का संग किया जाए और उनके संग में भगवान का भक्ति किया जाए तो भगवान की भक्ति से पाप ही नष्ट नहीं होते हैं, पाप करने की वासना भी नष्ट होती है। ये जानना चाहिए अन्यों का भजन और भगवान के भजन में क्या अंतर है। अन्यों के अन्य साधनाओं से पाप नष्ट होता है लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट नहीं होती। ये बहुत बड़ा प्रसंग अजामिल के प्रसंग में इस विषय पर हमारे आचार्यों ने बहुत मंथन किया है, बहुत मंथन किया है कि भक्ति और अन्य उपासना में क्या अंतर है। अन्य साधन है या अन्य देवी देवताओं का सानिध्य है उसमें बेनिफिट नहीं है। भगवान के पास अगर हम किसी भौतिक हेतु से भी जाते हैं तो वो हमारा हेतु भी पूरा होता है लेकिन साथ साथ में भोग की वृत्ति भी भगवान नष्ट कर देते हैं। इसलिए किसी भी कारण से भगवान के पास ही जाना चाहिए। अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उदार दी तीव्रेण भक्ति योजे न योगे न यजनते पुरुषम परम। आपका कोई भी हेतु है आप भगवान की शरण लीजिए, भक्ति कीजिए, दूसरों की शरण में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। तो ये शिव जी के अनुयायी थे, इनको सब भौतिक सुविधाएं सुख प्राप्त था, अतएव वे इससे उन्मत होकर गंगा जी में प्रवेश करके वहां देवताओं की कन्याओं के साथ रमण कर रहे थे। ये आपने गंगा के अंदर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अब देखिए वो क्या कर रहे हैं, नंगे होकर शराब पीकर नंगे होकर देवताओं की स्त्रियों के साथ रमण कर रहे हैं। व्यभिचार भी है, नशा भी है और अधर्म भी है। स्नान अगर हम किसी जल में स्नान करते हैं तो कभी नग्न स्नान नहीं करना चाहिए, ये पाप है। नग्न स्नान कहीं नहीं करना चाहिए, पुरुष हो या स्त्री हो, नग्न स्नान वर्जित। और दूसरा देखिए कितना बड़ा पाप, गंगा। गंगा में लोग क्यों स्नान करते हैं? पापों को नष्ट करने, पापों से मुक्त होने के लिए गंगा में स्नान किया जाता है। और यहां पर ये पाप भोगने के लिए गंगा में स्नान कर रहे हैं, उसी गंगा में ये स्नान कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी वहां लिखते हैं कि ये धार्मिक जो भी कार्य हैं, वास्तव में उसमें जो हमारा भावना होता है वो प्रमुख होता है। हम किस भाव से वो कर रहे हैं ये जानना चाहिए, हमारा भाव क्या है। तो उस गंगा में स्नान कर रहे थे और अचानक वहां पर देवर्षि नारद का आगमन हुआ, ये कथा। और देवर्षि नारद ने जब देखा तो उन स्त्रियों ने तो वस्त्र पहन लिए, लेकिन ये शराब के नशे में इतने उन्मत्त थे। देखिए नारद जी भक्ति के नशे में उन्मत्त हैं, वो शराब के नशे में उन्मत्त। हम गौर कथा सुन रहे थे तो वहां पर प्रभु जी बता रहे थे सुधांशु प्रभु कि नित्यानंद और हरिदास ठाकुर के पास, नित्यानंद और हरिदास ठाकुर जब जगई मगई के पास गए तो पहले दिन तो उन्होंने देखा ये तो बहुत नशे में और बहुत उन्मत्त है, नशे में मत है। तो उस दिन तो भाग आए और चैतन्य महाप्रभु ने पूरे दिन का डिटेल पूछा तो बताया कि प्रभु क्या बताएं, आज हमारे हमको ऐसे लोगों से भिड़ंत हो गया जो नशे में मत थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा वो भी तुम्हारे जैसे ही हैं, तुम भी तो मत हो, तुम भक्ति के नशे में मत हो, वो शराब के नशे में मत हैं, दोनों मत हो तो मेल हो सकता है, थोड़ा प्रयास करो, मेल हो सकता है। मतलब मत होने का गुण तो है उनमें, खाली विषय बदलना है, तो वहां कम प्रयास में हो जाएगा। ये भी एक गुण है, हैं भक्त जो होते हैं अवगुण में भी गुण देख। यहां जैसे एक बार हम ट्रेन में आ रहे थे, राधा कृष्ण प्रभु हमारे साथ थे, तो हमारे साथ दूसरे लोग थे, तो ताश खेल रहे थे, मतलब भक्त नहीं थे दूसरे लोग, और ताश खेलते खेलते उसमें वो इतने मग्न थे कि उनका स्टेशन छूट गया। तो जब वो तैयार हुए तो सब लोग उसकी निंदा करने लगे, कितने बेकार लोग हैं, कितना उसमें आ सकती है, इतना ट्रेन छूट गया। तो राधा कृष्ण प्रभु ने बताया कि इसमें कितना गुण है, हम तो जप करते हैं लेकिन आज तक जप में इतने आसक्त नहीं हुए कि कभी स्टेशन छूटा है, कभी छूटा कि हम जप में इतने मग्न हो गए कि स्टेशन छूट गया। तो हमारे से ये बेहतर है, खाली विषय अलग है लेकिन इनका आसक्ति बहुत तीव्र है। ऐसे लोगों को भक्त बनाना और भी आसान होता है, अगर वो विषय बदल दिया तो उसमें भी ये इतने ही आसक्त रहेंगे। इसलिए देखिए जितने भी पतित लोग थे जिनका आसक्ति भौतिक विषयों में बहुत था, वे लोग जब भक्त बने तो बहुत अच्छा भक्त बने, देखा जाता है मृगाहरी रत्नाकर बहुत ऊंच कोटि के भक्त बने, क्योंकि जो एक गुण है आसक्ति का वो गुण उनमें पहले से विद्यमान, खाली विषय को ट्रांसफर करना है। तो नारद जी ने देखा कि ये धन में इतने उन्मत्त हैं, तो बहुत शिक्षा दिया और शिक्षा देने के बाद उन पर कृपा किया। हमको याद है प्रभु जी क्या नाम, घन सुंदर प्रभु इस विषय पर बोल रहे थे एक दिन कि नारद जी ने जब उनको देखा तो लगा कि ओहो ये बहुत निम्न कार्य हो रहा है, इनसे इनका दुर्गति होगा। जैसे कोई संसार का व्यक्ति संसार के भोगों में पड़ा रहता है और उसको इस भोग की सुविधा प्राप्त होती है, बड़ा गाड़ी में घूम रहा है, बियर बार में जा रहा है, बहुत पैसे उड़ा रहा है, तो संसारिक व्यक्ति जो होता है भौतिकवादी व्यक्ति वो देखता है ये सुखी है, ये बहुत बड़ा भाग्यवान है। लेकिन उसी व्यक्ति को जब भक्त देखता है, संत देखता है, तो वो देखता है कि वो ये बहुत ही दुर्भाग्यशाली व्यक्ति। भौतिकवादी व्यक्ति इसको भाग्य समझते हैं और संत जो है उनको दुर्भाग्य समझते हैं, ये संसार का भोग कर रहा है और इसके बाद ये नरक में जाएगा, तो जो भौतिकवादी लोगों का विचार और आध्यात्मिकवादी लोगों का विचार संसार में उल्टा है, इसलिए भक्तों को कभी भौतिकवादी लोगों के विषय पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कभी कभी भक्त लोग हमसे कहते हैं कि प्रभु जी हमारे पास धन ना हो पद ना हो तो संसार में कौन पूछता है, नहीं पूछे तो और अच्छा है, क्या जरूरत है पूछवाने की। ऐसे भौतिकवादी लोगों से हमको सम्मान या पद समाज को समाज में कौन पूछता है। कभी कभी भक्तों के भी ऐसे विचार होते हैं, धन नहीं होगा गाड़ी नहीं होगा अच्छा वो नहीं होगा तो कौन पूछेगा। अब तो अभी तक हम भक्त के सिद्धांत को भक्ति के सिद्धांत को नहीं समझे। इधर नारद जी क्यों सोचकर उनको श्राप दे रहे हैं, वो सोचते हैं कि ये संसार के भोग हैं, ये इनको नरक में ले जाएंगे। जब नारद जी ने देखा तो ये विचार किया, अगर कोई भौतिकवादी व्यक्ति होता तो देखता कि ओ ये कितना बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति है, देखो कितनी सुंदर सुंदर गर्लफ्रेंडों के साथ घूम रहा है गाड़ी में, इसकी कितनी गर्लफ्रेंड है। ऐसा जब भौतिकवादी लोग देखते हैं तो सोचते हैं ये बहुत बड़ा व्यक्ति, ये सुखी है। लेकिन जब भक्त देखते हैं तो वो देखता है कि ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है, ये मनुष्य जीवन को व्यर्थ ही घुमा रहा है। हैं, हमारे मारवाड़ी में एक भजन गाते हैं, तूने हीरो गुमायो कचरा में, कचरा में रे कचरा में 5-25 का झगड़ा में तूने हीरो गुमायो कचरा में। 5-25 मतलब यही संसार के भोग, ये विषय धन, इसके विषय में तूने ये हीरा रूपी मनुष्य देह को गुमा दिया। ये तो भक्त देखता है, तो नारद जी ने देखा कि ओहो ये मनुष्य जीवन को कितना ऊंचा कुल, देवताओं का कुबेर जी के पुत्र हैं और ये जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, तो उन्होंने नारद जी ने कृपा किया और उनको श्राप प्रदान किया। इसी बात को यहाँ पर इस श्लोक में है, इसके अगले पूर्व जब भगवान का स्तुति कर रहे हैं ये नलकुवर और मणिग्र, तो उन्होंने स्तुति में सबसे पहले इस बात का स्मरण किया है और इस बात का स्मरण करते हुए उन्होंने भगवान को कहा है कृष्ण कृष्ण महायोगी न। ये महायोगी जो कहते हैं तो उस विषय का स्मरण कर रहे हैं कि हे प्रभु आप महान योगी हैं, ये आपकी योजना थी कि नारद जी के द्वारा हमको श्राप दिलवाया, आप महायोगी हैं। यह महायोगी शब्द ये घोषित करता है कि आप महायोगी हैं, आप हमारे वर्तमान भविष्य को जानते थे और आपने ये प्लान किया कि नारद जी से हमको श्राप दिलवाया, आप महायोगी हैं। कृष्ण कृष्ण महायोगी ना, पहले जब स्तुति, तो इस प्रकार नारद जी ने उनको श्राप दिया कि तुमको नग्न रहने की, तुमको नग्न रहने का बहुत शौक है, हैं? कई भक्त लोग इस पर बहुत टीका करते हैं कि जो आजकल के लोग नग्न रहने की होड़ लगा है तो समझना चाहिए कि ये वृक्ष बनने का तैयारी कर रहे हैं, झाड़ बनने का। भगवान कृपा करते हैं, आप मांस खाना चाहते हैं भगवान कृपा करके उसको शेर बना देते हैं, आराम से खाओ। आप कम वस्त्र पहनना चाहते हैं, नग्न रहना चाहते हैं, ठीक है झाड़ बन जाओ। तो इस प्रकार इनको नग्न रहने का बहुत शौक है तो उनको वृक्ष बनने का श्राप दे दिया। लेकिन भगवान के भक्तों का श्राप भी आशीर्वाद होता है और भौतिकवादी लोगों का आशीर्वाद भी श्राप जैसा है। लेकिन श्राप देने के साथ साथ नारद जी ने बहुत सुंदर एक बात कहा था, हैं? जो स्टार्ट में हमने प्रभुपाद जी की लीला से संबोधित किया था वो ही, कि ये वृक्ष बनेंगे, तुम वृक्ष बनोगे, लेकिन साथ साथ में उन्होंने कहा था कि स्मृति स्यान प्रसादेन तत्रापि मद अनुग्रह, स्मृति स्यान तुम वृक्ष बनोगे लेकिन मेरी कृपा से, मेरी कृपा से तुमको स्मृति बना रहेगा कि तुम क्या पाप प्रवर्त कर रहे थे, पाप में प्रवर्त थे और उसके बाद नारद जी ने हमको श्राप दिया, जिसके कारण हम वृक्ष बने। वृक्ष जो होता है उसमें ये चेतना नहीं होती है, मतलब स्मरण शक्ति नहीं होती है। चेतना होती है लेकिन स्मरण शक्ति नहीं होता है। स्मरण शक्ति पुरुष में ही होता है, लेकिन अगर भगवान के शुद्ध भक्त की कृपा हो तो झाड़ में भी वृक्ष में भी ये स्मृति बना रहता है। ये हम देखते हैं कि विदेश के लोग जो थे तो ये बिल्कुल झाड़ से भी गए गुजरे थे। झाड़ तो फिर भी बहुत उसमें कुछ गुण होते हैं, लेकिन उनको भी भक्त बनने का अवसर प्राप्त हुआ और आज वे प्रभुपाद जी की कृपा को भूले नहीं है। हम लोग प्रभुपाद जी की कृपा को भूल जाते हैं। हम लोग यहाँ पर हैं तो कभी कभी सोचते हैं हाँ बहुत अच्छा सुविधा मिला है, वो मिला, और प्रभुपाद जी की कृपा को भूल जाते हैं कि प्रभुपाद जी ने कितना परिश्रम करके कितना मेहनत करके हमको ये सुविधा प्रदान किया है और हमको आदेश दिया है कि आप लोग भी इसको आगे बढ़ाओ, प्रचार करो। लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं, हमको मिला बस भूल गए प्रभुपाद जी को। लेकिन विदेशी लोगों को देखिए, अपना घर छोड़ दिया, अपना देश छोड़ दिया, अपना परिवार छोड़ दिया और भारत में आकर प्रचार करते हैं। हम तो अभी परिक्रमा में तो आश्चर्यचकित हो गया जब यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वडोदरा के प्रेसिडेंट क्या नाम है, वासु घोष प्रभु, ये अमेरिकन विदेशी है, ये वहां पर प्रवचन दे रहे थे हिंदी में और हमने सुना कि वो गुजराती में भी प्रवचन देते हैं, और उससे बड़ा बात ही कि वो संस्कृत में बोल रहे थे, संस्कृत का श्लोक नहीं, संस्कृत में बात कर रहे थे महाराज से। उनके पास महाराज बैठे हुए थे, उनसे संस्कृत में बात किया, संस्कृत में, जैसे हम हिंदी या मारवाड़ी में बात करते हैं तो वो संस्कृत में बात कर रहे हैं, इतना संस्कृत जानते हैं विदेशी। ये प्रभुपाद का कृपा, और वो प्रभुपाद की कृपा को भूले नहीं। तो इस प्रकार नारद जी ने कृपा किया कि तुम इस बात को भूलोगे नहीं मेरी कृपा से, और मेरी कृपा से तुम भगवान का सानिध्य प्राप्त करोगे, मेरी कृपा से आपको भगवान का सानिध्य प्राप्त होगा। और इस प्रकार नारद जी ने जब श्राप दिया तो नारद जी की कृपा से उनको यह विषय प्राप्त हुआ। वे वृंदावन में देवताओं के 100 वर्ष के लिए वृक्ष बने, लेकिन उनका स्मृति बना रहा। और जब भगवान ने दामोदर लीला किया तो उस दामोदर लीला में भगवान दामोदर लीला कर रहे थे, जब माता यशोदा ने उनको बांध दिया और बांधकर माता यशोदा अपने कार्य में व्यस्त हो गई, तो भगवान देख रहे थे उस वृक्ष को, और उस वृक्ष को देखते हुए भगवान ने याद किया कि नारद जो है हमारा भक्त है, और नारद जी के वचन को सत्य करने के लिए नारद जी ने उनको आशीर्वाद दिया है कि मेरी कृपा से तुमको भगवान का सानिध्य प्राप्त होगा। तो उन नारद जी के मेरे भक्त के वचन को सत्य करने के लिए मुझे इन पर कृपा करना पड़ेगा, इनका उद्धार करना पड़ेगा। बहुत सुंदर ये भगवान विचार कर रहे हैं। भगवान का ये स्वभाव है, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जब प्रहलाद महाराज का बात को सत्य करने के लिए भगवान प्रकट हुए तो प्रहलाद महाराज की ही बात को सत्य करने के लिए नहीं, देखिए कितने भक्तों की बात को सत्य किया भगवान ने। भगवान अपनी बात को रख देते हैं एक तरफ, भले वो बात छूट जाए लेकिन अपने भक्त की बात को हमेशा सत्य करते हैं। सत्यम विधातुम निज, भगवान ने अपने भक्तों की एक कार्य करके प्रहलाद महाराज की बात को सत्य नहीं किया कि प्रहलाद महाराज ने कहा कि हाँ भगवान सर्व जगह हैं, इस क्या उस थंब में भी हैं, सर्वत्र है। तो उसी बात को भगवान ने सत्य नहीं किया, प्रहलाद महाराज की बात को भी सत्य किया, साथ साथ में ब्रह्मा जी की बात को भी सत्य किया, और साथ साथ में अपने भक्त है जय और विजय, विजय थे ये। ये जो क्या नाम भूल रहा हूं, हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप आखिर में कौन है? विजय। तो इनकी क्या इच्छा थी? इन हिरण्यकश्यप की भी इच्छा थी कि मैं दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, किसी मनुष्य के हाथ से ना मरूं, किसी देवता के हाथ से ना मरूं, घर में ना मरूं बाहर। ये किसकी इच्छा थी? हिरण्यकश्यप की। लेकिन हिरण्यकश्यप है कौन? विजय। तो वो विजय भी भगवान का भक्त है, तो उसकी बात को भी सत्य किया, ब्रह्मा जी की बात को भी सत्य किया, और प्रहलाद महाराज की बात को तो सत्य किया ही। हम देखेंगे अभी भगवान राम का जन्मदिन आ रहा है, रामनवमी आ रहा है। रामनवमी में अगर आप देखेंगे कि भगवान राम का जो अवतार हुआ, तो उस राम के अवतार का कारण सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। भगवान राम के अवतार का कारण मात्र यही है कि भगवान अपने भक्तों के वचन को सिद्ध करने के लिए ही, सत्य करने के लिए ही भगवान राम प्रकट हुए। कई आप कितने भी कारण दे सकते हैं कि भगवान राम का अवतार क्यों हुआ, अपने भक्तों के वचन को सत्य करने के लिए, बस पूरे पूरा कारण है। और कई भक्तों के, नारद जी का वचन है, और भी कई भक्तों के जो वचन थे उनका वचन सिद्ध करने के लिए भगवान राम का अवतार हुआ। तो इस प्रकार भगवान जो है अपने भक्तों के वचन को हमेशा सत्य करते हैं, और इस प्रकार नारद जी के वचन को सत्य करने के लिए भगवान बंधे हुए थे, लेकिन बंधे बंधे भी सरकते सरकते गए, खुद बंधे हुए हैं, लेकिन उन्होंने इस खंड और अमर का हरे कृष्ण नल कुंवर और मणिग्रीव का उद्धार किया। वे गए और जैसे ही गए, दोनों विस्तर जो वृक्ष थे वो धड़ाम से गिर गए और उनमें से ये दोनों का प्रागट्य हुआ। जैसे ही प्रागट्य हुआ, प्रागट्य होते ही उनको तो स्मरण था, प्रागट्य होते ही उन्होंने भगवान का स्मृति, भगवान का गुणगान प्रारंभ किया, और प्रारंभ करते ही भगवान का गुणगान प्रारंभ करने लगे। उसमें देखिए, भगवान का जो गुणगान है, ऐसा नहीं है कि भगवान का गुणगान या भगवान का स्मृति मात्र वेदों के जो वेद हैं उसके अनुसार ही करना चाहिए। भक्त अपने भाव से भी भगवान का स्मृति कर सकता है, गुणगान कर सकता है, लेकिन इस गुणगान में एक ध्यान रखा गया, जो इसमें भी ये गुणगान करने लगे तो गुणगान में भगवान का गुणगान करते हुए सर्वप्रथम व्यक्ति को पहले पहले अपना अपनी क्या कहते अपना गुणगान न कर अपनी स्मृति ध्यान रखना चाहिए, और उसके बाद दूसरा है कि भगवान का गुणगान कर भगवान का गुणावली, और तीसरा तीन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहले अपनी अपना स्थिति, अपना गुणावली, अपना स्थिति, जैसे मैं बहुत ही निम्न हूं, ये ध्यान रखना चाहिए, और बाद में भगवान का गुणगान करना चाहिए, और साथ साथ में गुणा भगवान की गुणावली। इस प्रकार उन्होंने पहले से कहा कि मैं तो बहुत ही निम्न प्रकार का हूं, मैं तो बहुत निम्न हूं। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु का गुणावली करते हैं, तो कहते हैं कि हरे कृष्ण, अद्भुत हो रहा है, श्री चैतन्य जोर से जरा बोलिए नमो महावदान्य नहीं नहीं ये श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। हाँ पतित पावन हेतु तव अवतार। हाँ मौसम प्रतीत प्रभु ना पाइए। अभी कोई नरोत्तम दास ठाकुर सबसे पतित नहीं है, पतित नहीं है, लेकिन फिर भी जब उनका गुणावली करते हैं तो हमारे सम कोई पतित नहीं है। तो सर्वप्रथम ये अपना ध्यान रखना चाहिए कि मैं सबसे पतित व्यक्ति हूँ और आप सबसे महान व्यक्ति हैं। इस प्रकार भगवान का स्तुति करना चाहिए। तो इस प्रकार स्तुति करने लगे और स्तुति करते करते अब इसमें कहते हैं तस्मे तुभ्यम भगवते। तस्मे जो भगवान का स्तुति किया है, आप सब लोग इसका श्रवण कर चुके हैं कि किस प्रकार उन्होंने हे प्रभु आप ही इस सृष्टि के संचालक हैं, आपने ही सृष्टि का प्रागट्य किया है और आप ही इस सृष्टि का विनाश करते हैं, आप ही सृष्टि का संचालन करते हैं और आप ही सर्वस्व हैं। ये जो जगत है वो भी आप ही ने बनाया है, कभी ये जगत प्रकट होता है कभी अप्रकट होता है, लेकिन ये जगत भी आप ही के द्वारा बनाया गया है और आप ही जगत का संचालन करते हैं, सब कुछ आप ही हैं। इस प्रकार प्रकृति करते हुए इसलिए यहां कहते हैं तस्मे तुभ्यम। तस्मे मतलब जो भगवान इन्होंने स्तुति किया है उनको, हे प्रभु आपको भगवते वासुदेवाय वेद्यसे। उन वासुदेव मतलब आप ही वासुदेव करते हुए कहते हैं आप ही इस सृष्टि के उद्गम हैं और आप ही संकर्षण वासुदेव प्रदुमन और अनिरुद्ध आप ही हैं। वासुदेव आपका आप ही उनके उद्गम हैं और आप आत्मभूति गुणे छन्न महिमने आपने ही इस जगत का प्रागट्य किया है, आप ही इस जगत को चलाने वाले हैं और आपका ही इस जगत में सृष्टि होता है प्रलय होता है, ये सब कुछ करने वाले आप हैं। हे प्रभु आपको हम नमस्कार करते हैं, क्षमा कीजिए मेरा थोड़ा तबीयत बहुत खराब है इसलिए मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मुझको चक्कर आ रहा है इसलिए बोल नहीं पा रहा हूँ, इसलिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। तो इस प्रकार देवर्षि नारद की कृपा से ये कुबेर जी के पुत्र भगवान का स्तुति कर रहे हैं। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि मुझे थोड़ा इस समय चक्कर जैसा हो रहा है इसलिए आपका ये गुणगान नहीं कर रहा हूँ। हरे कृष्ण जय कृष्ण। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा।